सफा नंबर 157, बाब नंबर 5, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। सितंबर 1895 की एक दोपहर एक गोरा चिटा कशीदा कदामत मुतनासब जिस्म नौजवान सफेद शलवार कमीज पर छोटा कोट पहने सर पर रूमी टोपी ओढ़े लाहौर के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी से उतरा। ये नौजवान रना इकबाल थे। इन्हें स्टेशन पर लेने के लिए इनके दोस्त शेख गुलाब दीन आए हुए थे। दोनों बगलगीर हुए और गुलाब दीन इकबाल को इनके सामान समेत तांगे में भाटी दरवाजे के अंदर अपने मकान पर ले गए। इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज में बीए की क्लास में दाखिला लिया और चंद दिन गुलाब दीन के मकान पर ठहरने के बाद क्वार्टर रेंगल हॉस्टल के कमरा नंबर 1 में फरोकश हुए। इकबाल लाहौर के 4 साल जमाना तलब इल्मी के दौरान इसी कमरा में मुकीम रहे। गैरट बयान करता है कि इस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज में तलबा की तादाद 200-250 से ज्यादा ना थी, इसलिए तलबा का एक दूसरे को जानना और अपने असाज़ा के साथ करीबी रवाबत पैदा करना आसान था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इमारत के सामने निचले कतअ अराजी में, जिसे अब ओवल कहा जाता है, संतरे और लीमू के बेशुमार पौधों के अलावा बड़े बड़े दरख्त थे जिन पर शहद की मक्खियों ने छत्ते लगा रखे थे। मौसम गर्मा की तवील दोपहरों में ये जगह लड़कों और शहद की मक्खियों की अमाजगा होती। लड़के तवील दरख्तों के घने साए में घास पर अपनी अपनी सफ़े बिछाकर यहाँ घंटों लेटे किताबें पढ़ते और इनके सरों पर शहद की मक्खियाँ भरमराती रहती। कॉलेज के छोटे टावर के एन सामने कदरे शमाल की तरफ एक पुराना बरगद का दरख्त था, जिसके तने के इर्द गिर्द लकड़ी के डाइस पर लड़के बैठकर पढ़ते या खुशगपियाँ लगाते। कॉलेज की ज़िंदगी नहायत सादा थी। मुख्तलिफ किस्मों की सोसाइटियों, अंजुमनों, मीटिंगों या सालाना इज्तिमाओं का रवाज अभी ना चला था। असाज़ा और तलबा को एक दूसरे से मिलने या करीब से जानने के मौके अक्सर मिलते रहते। इसी तरह होनहार तलबा उस्ताज़ा की निगाहों में रहते और अपने उस्ताज़ा से पूरा पूरा फ़ायदा उठाते या इनसे असर कबूल करते। इकबाल के लिए कॉलेज में दोस्त बनाना मुश्किल ना था। चंद एक तालिब इल्मों को तो वो पहले ही से जानते थे, मसलन चौधरी जलालुद्दीन डस्का जिला सियालकोट के रहने वाले थे और सियालकोट से इंट्रेंस पास करने के बाद लाहौर आकर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए थे। वो हॉस्टल में रहते थे। शेर से खास जौक था और इनके जौक की परवरिश सैयद मीर हसन की सोबत में हुई थी। इकबाल की मुलाकात गुलाम भेंक नैरंग से जलालुद्दीन के जरिए हुई। इस वक्त हुई जब इकबाल अभी गुलाब दीन के हाँ ठहरे हुए थे और हॉस्टल में दाखिल ना हुए थे। अलबत्ता नरेंग और जलालुद्दीन हॉस्टल में आ चुके थे। एक शाम नरेंग जलालुद्दीन के हमरा शहर को गए। भाटी दरवाजे के करीब पहुंचे तो इकबाल आते हुए दिखाई दिए। जलालुद्दीन ने नरेंग से इनका तारफ कराते हुए कहा कि ये हैं शेख मोहम्मद इकबाल, शायर जिनका मैंने जिक्र किया था। हॉस्टल में इकबाल का कमरा रफ्ता रफ्ता अहबाब के जगमगटों से और शेर खवानियों का मरकज बनने लगा। हॉस्टल की सोबतों के मुतल्लिक नरेंग लिखते हैं, इकबाल से ज्यादा सोहबत का मौका इस वक्त मिला जब वो भी बोर्डिंग हाउस में दाखिल हो गए। इकबाल चौंके बीए क्लास में सीनियर तलबा के जुमरे में थे। वो क्यू बकल में रहते थे। खाने का इंतजाम सीनियर और जूनियर तलबा का एक ही मतबखा में था। सिर्फ इस कदर तफरीक थी कि मुसलमानों का मतबख अलग था और हिंदुओं और सिखों का अलग। इकबाल को नीचे की मंजिल में मगरबी कतार के जनूबी सिरे पर क्यूबल मिला था। मैं मशरकी कतार की एक डार मेट्री में रहता था। वो बिलहाल सुकूनत हम दोनों में बादल मशरकीन था, लेकिन कॉलेज के औकात दर्स के सवा हम दोनों का वक़्त ज़्यादातर एक दूसरे के साथ ही गुजरता और औकात मुताला के बाद गर्मी के मौसम में रात के वक़्त इनका पलंग हमारी डारमेट्री के आगे हमारे ही पास बिछता था। इकबाल की तबीयत में उस वक़्त से एक गोना कतबीयत थी और वह कुतुब अज़ जानमनी जनबद का मसादक थे। मैं और बोर्डिंग हाउस में जो जवान के दोस्त थे सब इन्हीं के कमरों में इनके पास जा बैठते। मैं वही मेज मीर फर्श पर बैठे रहते थे। हुक्का जबी से इनका हमदम व हम नफस था। बरहना सर बुनियान दर बदर टखने तक तहमत बांधे हुए और अगर सर्दियों का मौसम है तो कंबल ओढ़े हुए हुक्का पीते रहते थे और हर किस्म की गप उड़ाते रहते थे। तबीयत में जराफत बहुत थी। फबती जबरदस्त कसते थे। अदबी मुबासे में भी होते थे। शेर कहे भी जाते थे और पढ़े भी जाते थे। इस इब्तदाई जमाने में किसी को भी इकबाल में एक अच्छे शायर मगर आम म्यार के शायर के सिवा कुछ नजर ना आया। या अगर आप इजाज़त दें तो ये कहूँगा कि देखने वालों की कोताही नज़र ना थी, बल्कि इसी वक्त वो चीज़ मौजूद ही ना थी जो बाद में बन गई। हाँ, एक बात ज़रूर लिखने के काबिल है, हमारी इन सह साला सोबतों में इकबाल अपनी एक स्कीम बार बार पेश करते थे, मिल्टन की मशहूर नज़म फरदौश गुमशुदा और तहसील फरदौस का जिक्र करते हुए कहा करते थे कि वाकयात करबला को ऐसे रंग में नज़म करूँगा कि मिल्टन की नज़म का जवाब हो जाएगा, मगर इस तजवीज़ की तकमील कभी ना हो सकी। मैं इतना और कहूँगा कि उर्दू शायरी की इस्लाह और तरक्की का और इसमें मगरबी शायरी का रंग पैदा करने का बार बार जिक्र आया करता था। हॉस्टल में क्याम के दौरान बाज़ औक़ात इकबाल अपने अहबाब के यहाँ भी जाया जाकर रहा करते थे, मसलन गुमटी बाजार से ज़रा आगे सैयद मीठा के कूचा हनुमान में मौलाना सलाहुद्दीन अहमद और इनके बड़े भाई मौलवी ज़ियाउद्दीन अहमद का वालिद का मकान था। ज़ियाउद्दीन अहमद इकबाल के हम जमात थे, इसलिए कभी कभी इनके यहाँ जाकर क्याम करते। ज़ियाउद्दीन अहमद और नरेंग को वर्जिश का बहुत शौक था, ये शौक मकान के एक कोने में बने हुए अखाड़े में कुश्ती लड़कर पूरा किया जाता। कभी कभी इकबाल को शौक चढ़ाता तो वो भी लंगोट बांध कर अखाड़े में उतरते और नरंग के साथ दंगल करते। बीए की क्लास में इकबाल ने अंग्रेजी, फलसफा और अरबी के मजामीन के लिए इकबाल अगरचा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तालब इलम थे, लेकिन इस जमाना में ओरिएंटल कॉलेज की बीए की जमातों में भी पढ़ते थे। डॉक्टर गुलाम हुसैन जुल्फकार के बयान के मुताबिक इस वक्त ओरिएंटल कॉलेज लाहौर कॉलेज की इमारत ही में कायम था और दोनों कॉलेजों के मुबैन बहमी तावन के असूल पर बाद मजामीन के पढ़ाने में इश्तराक अमल का सिलसिला जारी था। इकबाल बीए के तालिब इल्म होने की हैसियत से अंग्रेजी और फलसफा के मजामीन तो गवर्नमेंट कॉलेज की जमातों में पढ़ते और अरबी जबान व अदब का मुताला ओरिएंटल कॉलेज में करते थे। इस दौर के गवर्नमेंट कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज के उस्ताजा में मौलाना फैजुल हसन सानपुरी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी मोहम्मद दीन शामिल थे। इकबाल ने 1897 में बीए अरबी व अंग्रेजी में इम्तियाजी हैसियत के साथ पास किया और तमगे पाए। सफ़ा नंबर 160। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैलेंडर 1906 के मुताबिक इकबाल ने बीए का इम्तहान सेकंड डिवीज़न में पास किया। अजीम हुसैन अपने वालद की अंग्रेज़ी में नोश्ता सवाना हयात बानवान फजल हुसैन में एक जगह लिखते हैं कि 1897 में बीए के इम्तहान में कुल 105 तालब इलम कामयाब हुए, जिनमें से चार ने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। इकबाल और इनके हम जमात मियाँ फजल हुसैन को सेकंड डिवीज़न मिली। मुसलमानों में इकबाल अव्वल थे और मियाँ फजल हुसैन दोम। इकबाल की तबीयत का रुझान चौंके फलसफा की तरफ था, इसलिए उन्होंने एम ए फलसफा में दाखिला लिया। इस जमाने में बीए में फलसफा के प्रोफेसर डब्ल्यू बैल थे, जो 1896 में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होकर गवर्नमेंट कॉलेज से चले गए थे। इनके बाद कुछ मुद्दत तक तारीख के प्रोफेसर डलिंगर फलसफा पढ़ाते रहे, फिर प्रोफेसर ओशर आ गया। वो 1898 में मुस्ताफी हो गया और इनकी जगह प्रोफेसर टी डब्ल्यू आर्नल्ड ने ली। गैरेट के बयान के मुताबिक आर्नल्ड ने 11 फरवरी 1898 को अपने मनसब का चार्ज लिया। आर्नल्ड अलीगढ़ कॉलेज से कतई तल्लक करके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फलसफा के प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे। सर सैयद इनकी बड़ी कदर करते थे और वो मौलाना शिबली नुमानी के भी गहरे दोस्त थे। आर्नल्ड की मुशफकाना रहबरी ने इकबाल के ज़ौक़े तहसील फलसफा को जला बख्शी और आर्नल्ड खुद भी इकबाल की सलाहियतों से इस कदर मुतासर हुए कि इनसे दोस्ताना बर्ताव करने लगे। बकौल सर अब्दुल कादर, आर्नल्ड इल्मी जस्तजू और तलाश के जदीद तरीकों से खूब वाकफ थे। इन्होंने अपने शिगिर्द को अपने मजाक और अपने तर्ज अमल में रंग दिया और जो दोस्ती और मोहब्बत उस्ताद और शिगिर्द में पहले दिन से पैदा हुई वो आखिरकार शिगिर्द को उस्ताद के पीछे पीछे इंग्लिस्तान ले गई। आर्नल्ड इकबाल के इस कदर मदा बन गए थे कि इनके मुतल्लिक अपने अहबाब से अक्सर कहते थे कि ऐसा शिगिर्द उस्ताद को महक्क और महक्क को महक्क तर बना देता है। इकबाल ने मार्च 1899 में एम ए फलसफा का इम्तिहान दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर 1906 के मुताबिक उन्होंने एम ए में थर्ड डिवीज़न ली, मगर चूंकि यूनिवर्सिटी में इस मजमून के वाहिद कामयाब उम्मीदवार थे इसलिए पंजाब में अव्वल भी वही रहे और नकराई तमगा भी हासिल किया। एम ए फलसफा की क्लासों के साथ साथ इकबाल ने 1898 में लाहौर लॉ स्कूल की जमातों में कानून के तालिब इलम की हैसियत से भी पढ़ना शुरू कर दिया, मगर वो दिसंबर 1898 के कानून के इब्तदाई इम्तिहान में जोरसी प्रोडंस के परीक्षा में फेल हो गए। उन्होंने बाद में दिसंबर 1900 में के कानून के इब्तदाई इम्तिहान में क्लासों में शामिल हुए बगैर बैठने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन वो दरख्वास्त नामंजूर हुई। इसके बाद इकबाल ने यहाँ कानून का इम्तिहान देने का इरादा तर्क कर दिया और इनकी इस ख्वाहिश की तकमील बिल आखिर लंदन में हुई। आर्नल्ड 1904 में मुलाजमत से सपदोश होकर इंग्लिस्तान वापस चले गए। इस मौके पर इकबाल ने एक अलविदाई नज़म बाउनवान नालाए फराक तहरीर की, जिसमें इस अलमी ज़ौक का ख़ास तौर पर जिक्र है जो इनके फैज़ सोबत ने इकबाल में पैदा कर दिया था। तू कहाँ है ए कलीमे ज़रवा सिनाए इलम, तेरी मौज नफ्स बादे निशात अफजाए इलम, अब कहाँ वो शौक रह पीवाई सराए इलम, तेरे दम से था हमारे सर में भी सदाए इलम। मगर आर्नल्ड ने इकबाल में जो इल्मी तहकीक के लिए तजस्स या तशनगी पैदा कर दी थी, इसने और खुद आर्नल्ड की ज़ात से वाबस्ती इन्हें इंग्लिस्तान जाने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा अज़म इंग्लिस्तान का इजहार भी मतज़क्रा नज़म में मौजूद है। खोल देगा दश्त वश्त अकदाए तकदीर को, तोड़ कर पहुँचूंगा मैं पंजाब की जंजीर को। बहरहाल यहाँ इस बात को नज़रअंदाज ना करना चाहिए कि उस्ताद से गहरे रवाबत और गहरे तल्लक खातर के बावजूद इकबाल आर्नल्ड की शख्सियत और इसकी हदूद से पूरी तरह अशना थे। सैयद नज़ीर नियाज़ी तहरीर करते हैं कि 1930 में जब आर्नल्ड की वफात की खबर इन तक पहुँची तो अश्क बार आंखों के साथ फरमाया, इकबाल अपने उस्ताद और दोस्त से महरूम हो गया। इस पर नियाज़ी ने आर्नल्ड के मर्तबा अश्तराक और इस्लाम से इनकी अकीदत का जिक्र छेड़ा तो तज्जब से गोया हुए कि आर्नल्ड का इस्लाम से क्या तल्लक, दावत इस्लाम और इस किस्म की तसानीफ पर मत जाओ। आर्नल्ड की वफादारी सिर्फ खाक इंग्लिस्तान से थी, इन्होंने जो कुछ किया इंग्लिस्तान के मुफाद के लिए किया। मैं जब इंग्लिस्तान में था तो उन्होंने मुझे ब्राउन की तरीक़े अदबियात ईरान पर कुछ लिखने की फरमाइश की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे इस किस्म की तसनीफात में इंग्लिस्तान का मफाद काम करता नज़र आया था। दरअसल ये भी एक कोशिश थी ईरानी कौमियत को हवा देने की, ताकि इस तरह मिल्लत इस्लामिया की वहदत पारा पारा हो जाए। बात यह है कि मगरब में फ़र्द की ज़िंदगी सिर्फ मुल्क के लिए है और वतनी कौमियत का तकाजा भी ये है कि मुल्क और कौम दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, को हर बात पर मुकदम रखा जाए। लिहाजा आर्नल्ड को मसीहियत से गरज थी ना इस्लाम से, बल्कि सियासी एतबार से देखा जाए तो आर्नल्ड क्या हर मशतशरक का इल्म और फजल वही रास्ता अख्तियार कर लेता है जो मगरब की हवस इस्तमार और शहनशाहियत के मुताबिक हो। इन हजरात को भी शहनशाहियत पसंदों और सियासतकारों का दस्त बाजू तसव्वुर करना चाहिए। सफ़ा नंबर 164। मौलवी अहमद इन एडवोकेट बयान करते हैं कि इकबाल की लाहौर आमद से बेशतर भाटी दरवाजे के अंदर बाजार हकीमा में एक अंजमन मुशायरा कायम थी, जिसकी नशिस्तें हकीम अमीनुद्दीन के मकान में मुनक़द हुआ करती। अमीनुद्दीन इसी ख़ानदान हकीमा से तल्लक रखते थे जिनके नाम पर बाजार मशहूर है। इस अंजमन मुशायरा की बुनियाद हकीम शुजाउद्दीन ने 1890 में रखी थी और पहले इसके मुशायरे हकीम अमीनुद्दीन के मकान पर होते थे, मगर 1896 में हकीम शुजाउद्दीन के इंतकाल के बाद ये मुशायरे नवाब गुलाम महबूब सुबहानी खलफ शेख अमामुद्दीन वाली कश्मीर की सरपरस्ती में इनकी हवेली में होने लगे। हकीम शुजाउद्दीन अपनी ज़िंदगी में मीर मजलस होते थे, मिर्ज़ा अरशद गुरगानी दिलवी और नाजर हुसैन नाजम लखनवी मुशायरे की रूए रवां थे। दोनों खुद भी शेर कह कर लाते और इनके शागिर्दों और सनाख्वानों की एक दूसरे के मुकाबले में तबा आजमाइयाँ भी मुशायरे की रौनक दोबाला करती थीं। तमाशाइयों का एक अच्छा खासा जगमगटा होता था। कॉलेज के नौजवान तलब इल्म भी शेर गोई और शेर फहमी के शौक में खींचे चले आते थे और सखन दानी की दाद लेने और देने में किसी से पीछे ना रहते। इकबाल लाहौर के किसी मुशायरे में शरीक ना हुए थे, लेकिन नवंबर 1895 की एक शाम इनके चंद हमजमात इन्हीं खींच कर हकीम अमीनुद्दीन के मकान पर इस मजलस से मुशायरा में ले गए। मुशायरे में अरशद गोरगानी हसबे मौजूद मौजूद थे और शिरकत के लिए खास तौर पर फिरोजपुर से आए हुए थे। मीर नाजम हुसैन नाजर भी मौजूद थे। इन दोनों के शागिर्द भी कसीर तादाद में मौजूद थे और तमाशाइयों का हजूम था। यहाँ लाहौर में गलबन पहली मरतबा इकबाल ने मुशायरे में अपनी नज़म पढ़ी। जब आप इस शहर पर पहुँचे, मौती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के, तो अरशद बेख्तियार होकर दाद देने लगे और इन्हें मोहब्बत व कदरदानी की निगाह से देखा। इसी गज़ल का मकता जो इस वक्त इकबाल ने पढ़ा दिल्ली और लखनऊ की जुबान के झगड़ों पर इनके ख्याल की अक्कासी था। इकबाल लखनऊ से ना दिल्ली से है गर्ज, हम तो असीर हैं खमे जुल्फ कमाल के। लाहौर में दरअसल हाली और आज़ाद ने शेर का ज़ौक पैदा कर दिया था, और अरशद जो एक बरजस्ता शायर होने के साथ साथ शेर के नकाद भी थे, लाहौर आते जाते रहते थे, बल्कि कुछ अरसे के लिए लाहौर ही में अकामत पजीर हो गए थे। इकबाल की मतज़करा गज़ल से मालूम होता है कि इस इब्तदाई दौर में इन्हें महसूस होने लगा था कि दिल्ली और लखनऊ की शायरी की हदूदों के युद्ध से आज़ाद होकर ही वो अपने लिए नई राह पैदा कर सकते हैं। बहरहाल इकबाल इस अंजुमन मुशायरा में शरीक होने लगे और लाहौर के मुश्ताकान सुखन की तवज्जो इनकी तरफ मबजूल हो गई। अगले साल यानी 1896 में मोहम्मद दीन फौक गढ़थल ज़िला सियालकोट से मुलाजमत की तलाश में लाहौर आए और भाटी दरवाज़ा बाजार हकीमा की अंजमन मुशायरा की धूम सुनकर वहाँ पहुँचे। इस शाम महफिल में इकबाल भी मौजूद थे, फौक ने भी अपनी गज़ल पढ़ी, दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में ऐसी दोस्ती पैदा हो गई जो ता हयात इकबाल कायम रही। फौक ने बाद में इस शायर से बढ़कर एक अदीब मौरख और अखबार नवीस की हैसियत से शोहरत पाई, मगर इकबाल के गवर्नमेंट कॉलेज में तालिब इल्मी के दौर में अभी तक उन्होंने अखबार पंजा फुलाद, कश्मीरी मैगजीन और अखबार कश्मीरी नहीं निकाले थे। गो इसी ज़माने में लाहौर में कायम शुदा अंजमन कश्मीरी मुसलमाना ना के इजलासों में फौक बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लेने लगे और इकबाल भी इनकी मजालस में नज़र आने लगे। इकबाल ने इब्तदा में कश्मीर के मतलब जो अशार और कतात कहे वो इसी अंजमन के इजलासों में पढ़े गए थे और बाद में फौक के अखबार में इनकी अशात हुई। सर अब्दुल कादर तहरीर करते हैं कि इन्होंने 1901 में गलबन 2-3 साल पहले इकबाल को पहली मरतबा लाहौर के एक मुशायरे में देखा, जहाँ इनको इनके चंद हम जमात ले आए थे और उन्होंने ये सुनकर इनसे एक गज़ल भी पढ़वाई थी। इस वक्त तक लाहौर में लोग इकबाल से वाकिफ ना थे, छोटी सी गज़ल थी, सादा से अल्फाज ज़मीर भी मुश्किल ना थी, मगर कलाम में शोखी और बेसाख्ता पर मौजूद था, बहुत पसंद की गई। इस तहरीर से जाहिर होता है कि सर अब्दुल कादर से इकबाल का तारफ 1898 या 1899 में मखजन के इजरा से तकरीबन 2-3 साल कबल हो चुका था। इसी मुलाकात का जिक्र उन्होंने मजीद तफसील के साथ अपने एक बाद के मजमून इकबाल की शायरी का इब्तदाई दौर में किया है। मैंने सितारा इकबाल का तलू देखा और चंद इब्तदाई मनाजल तरक्की में इकबाल का हम नशीन और हम सफर था। 2-4 तस्वीरें इस इब्तदाई दौर की पेश करता हूँ। लाहौर में एक बज़्म मुशायरा बाजार हकीमा में हकीम अमीनुद्दीन साहब मरहूम के मकान पर हुआ करती थी। एक शब में इस बज़म में एक नौजवान तालिब इल्म अपने चंद हम असरों के साथ शरीक हुआ। इसने सादा सी गज़ल पढ़ी जिसका मकता ये था, शेर कहना नहीं इकबाल को आता लेकिन आप कहते हैं सन नूर तो सख नूर ही सही, इस सख नूर ही सही की बेसाख्ती और पढ़ने के बेसाख्ता अंदाज से सखन फहम समझ गया कि उर्दू की शायरी के उफक पर एक न्यास तरह नमदार हुआ है। इसी गज़ल में एक शेर और था जिसकी सामीन ने बहुत दाद दी और तकाजा किया कि इकबाल साहब अगले मुशायरे में भी ज़रूर शामिल हों। वो शेर ये था, खूब सूझी है तह दाम फड़क जाऊँगा, मैं चमन में ना रहूँगा तो मेरे पास ही आ सही। बकौल सर अब्दुल कादर इकबाल कमीज़ वास्कट और शलवार पहने हुए थे। इस वक्त वो लड़कपन की हद दूध से निकलकर शबाब की सरहदों में दाखिल हो चुके थे। इनके निखरे हुए रंग और भरे हुए जिस्म ने इनकी शख्सियत में अजीब बनकपन पैदा कर रखा था। इनके बाबकार चेहरे को देखते ही इनकी गैर मामूली शख्सियत का नक्श दिल पर सबत हो जाता था। मुशायरों में सामीन की तादाद बढ़ती चली गई। बाद में यही मुशायरे नवाब गुलाब महबूब सुबहानी की सदारत में इस मकाम पर मुनक़द होने लगे जहां आजकल अनारकली बाजार के शुरू में होटल वाक़िया है। इन मुशायरों की तनजीम के लिए एक अदबी अंजमन भी कायम हो गई जिसके सदर मदन गोपाल, बैरिस्टर और सेक्रेटरी खान अहमद हुसैन थे। लाला हरकिशन लाल, मियां शाहदीन और दीगर नामवर हस्तियां भी इसकी रुकन बन गए। खान अहमद हुसैन खान मदीर शबाब उर्दू इस मजलस की रूह रवां थे। कुछ मदद बाद शायराना चश्मक की बिना पर इस अंजमन का लखनवी बाजू कट कर अलहदा हो गया जिसने बज़्म कैसरी की सूरत अख्तियार कर ली। नाजर हुसैन नाजम इसके करता धरता थे, इनके दोस्तों और शागिर्दों का हल्का बड़ा वसी था। खान अहमद हुसैन खान की तरफ से शोरे महशर और नाजम की तरफ से सुखन के नामों से तरह ही गज़लों के माहवार रसाले भी शाया होते थे। इकबाल नवाब गुलाम हुसैन महबूब सुबहानी के मुशायरों में शरीक होकर तरह ही गज़लें पढ़ते थे। इसी अंजमन के किसी एक शायर मुशायरे में जिसके लिए ये तरह दी गई थी, मेरा सीना है मशरक आफताबे दाग हिजरा का। इकबाल ने अपनी वो गजल पढ़ी जिसका मकते में दाग की शागिर्दी का फख्र इजहार किया गया था। नसीम व तशना ही इकबाल कुछ इस पर नहीं नाजा, मुझे भी फख्र है शागिर्दगी दाग सखन दान का। इसी अंजमन के किसी इजलास में इकबाल ने अपनी नज़म हमाला भी पढ़कर सुनाई थी। अंजमन की कोशिश थी कि एक गजल के अलावा नज़म को भी रिवाज दिया जाए। सर अब्दुल कादर तहरीर करते हैं कि इकबाल की यह नज़म नए रंग की नज़म थी जिसमें ख्यालात मगरबी थे और बंदशें फारसी, और साथ ही हिब्बे वतन की चाशनी इसमें मौजूद थी। इस लिहाज से गलबन 1898 या 1899 में इसी बज़म के नशिस्तों में इकबाल के नए अंदाज की शायरी की इब्तदा हुई। मौलवी अहमद दीन मजीद तहरीर करते हैं कि हकीम अमीनुद्दीन के मकान के सामने जहाँ अंजमन मुशायरा कायम थी, एक छोटा सा मकान हकीम शहबाजुद्दीन का था जो अमीनुद्दीन के चाचाजाद भाई थे। हकीम शहबाजुद्दीन नहायत ही दुबले पतले आदमी थे, मगर इनका दिल इस्लामी अख़ुव्वत और मोहब्बत के जोश से हर वक्त लबरेज रहता था। खातरदारी और मेहमान नवाजी इनका शेवा, और खिदमत और हमदर्दी इनकी जबलत थी। इनके खसाइल की वजह से इनका मकान एक क्लब बन गया था जो जहाँ शहर के बामजाक असहाब जमा होते थे। अंजमन मुशायरा में इकबाल की शोहरत के बायस हकीम शहबाजुद्दीन और इनकी जमात ने फिलफौर इकबाल को अपने दायरा असर में ले लिया, और चंद ही रोज में इकबाल इस जमात के रुकन बन गए। हबाब के इस ग्रोह ने जो रफ्ता रफ्ता इकबाल का हल्का बगोश हो गया था। सफा नंबर 169। इन्हीं बिलाकर 1900 में अंजमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास के लिए नज़म लिखने पर आमादा कर लिया। इस तफसील से तो ये वाजह होता है कि 1895 से लेकर 1899 तक इकबाल को लाहौर की मुख्तलिफ अंजमनों ने अपनी तरफ खींचा, और यहाँ के एक मखसूस बज़ौक तबका से इनकी शनासाई हो गई। अगर एक तरफ वो अंजमन मुशायरा के रुकन की हैसियत से मुशायरों में शरीक होकर रवायती गजलें पढ़ते थे, तो दूसरी तरफ अदबी अंजमनों के इजलास में अपनी तहरीर करदा नए अंदाज की नज़में सुनाते। इसी तरह वो अंजमन कश्मीरी मुसलमाना लाहौर से भी वाबस्ता थे। ये अंजमन फरवरी 1896 में लाहौर की कश्मीरी बरादरी के चंद बुजुर्गों ने कायम की थी, जो 1897 के वसत में बंद हो गई, लेकिन 1901 में दोबारा जिंदा की गई। इकबाल इसकी कार्रवाइयों में सरगर्म हिस्सा लेते और इसकी मजालस में पुरजोश नज़में पढ़ते थे। बाद में हकीम शहबाजुद्दीन के हलका के जेरे असर वो अंजमन हमायत इस्लाम के बड़े मजमों और जलसों में शरीक होकर एक मिल्ली और अवामी शायर की हैसियत से मकबूल आम हुए। इकबाल इन मजालस पे अमूमन अपना कलाम तख्त लफज सुनाते थे, मगर इनकी आवाज़ नहायत दिलगुजार थी। इसलिए इसी ज़माने में बाज़ बेतकल्लफ दोस्तों के इसरार पर उन्होंने कभी कभार अपना कलाम तरन्नम से पढ़ना शुरू कर दिया। सर अब्दुल कादर अपने मजमून कैफे गाम में तहरीर करते हैं, शेर से रगबत के साथ इकबाल को मौसीकी का भी शौक़ था। इनको इल्म मौसीकी से गहरी वाकफियत पैदा करने का को मौका नहीं मिला, मगर इनके कान मौसीकी की अच्छी शनाख्त रखते थे, और कोई गाता हो तो वो इससे ऐसा लुत्फ़ उठाते थे कि जैसे कोई माहिर फ़न उठाए। कुदरत ने खुद इन्हीं भी अच्छा गला अता किया था, इसलिए कभी कभी बेतकल्लफ दोस्तों की सोबत में वो अपना कलाम तरन्नम से पढ़ते थे, जिससे अशार का लुत्फ़ दुबाला हो जाता था। वो हर बहर के लिए ऐसी मौजू ले ले चुनते लेते थे कि सुनने वाले महसूर हो जाते थे। इस तरन्नम के वक्त इन पर ऐसा गम की हालत तारी होती थी कि और सुनने वाले भी इससे असर पजीर होने से बच नहीं सकते थे। जब उन्होंने बड़े मजमों और कौमी जलसों में शरीक होना शुरू किया, तो पहले अपना कलाम तख्त लफज सुनाते थे, फिर रफ्ता रफ्ता लोगों को खबर हो गई कि वो खुश आहंग भी हैं, तो फरमाइशें होने लगी कि ले से पढ़ें। दोस्तों के कहने सुनने से वो मान गए, फिर तो यही चर्चा हो गया। जब कभी वो तख्त लफज पढ़ना चाहें तो लोग इन्हीं तरन्नम पर मजबूर कर दें। लाहौर की मशहूर तलीमी अंजमन हमायत इस्लाम के सालाना इजलास अक्सर इनके कलाम से मुस्तफीद होते थे। पहले पहल जब इनका कलाम तरन्नम से वहां सुना गया, तो कई मौजूद तबा तलबा और बहुत दूसरे शुरा को शौक हुआ कि वह इनके तर्ज तरन्नम का तत्बा करें। अब जिससे देखो वो अपना कलाम इसी तरह से पढ़कर सुना रहा है। ख्वाजा दिल मोहम्मद एमए इस्लामिया कॉलेज में रियाजियात के प्रोफेसर हैं और शायरी में भी नाम पैदा कर चुके हैं। इस वक्त तालिबे इल्म थे और इकबाल की आवाज़ का नमूना पेश करने में बहुत कामयाब समझे जाते थे। इन दिनों दिल्ली के शाही खानदान के एक नामवर फर्द मिर्ज़ा अरशद गुरकानी मरहूम जिंदा थे, और फिरोजपुर के सरकारी मदरसे में फारसी पढ़ाने पर मामूर थे। वो भी अंजमन के सालाना जलसों में अपनी कौमी नज़में सुनाया करते थे, जो बहुत मकबूल होती थी। मिर्ज़ा साहब हमेशा तख्त लफ्ज पढ़ते थे। उन्होंने इकबाल की रोज़ अफजों कबूलियत को देखकर महसूस किया कि इकबाल की खुश आहंगी इसकी नज़म को पर लगा रही है, और अपनी नज़म में इसकी तरफ इशारा करते हुए यह बिसरा लिखा, नज़में इकबाली ने हर एक को गोया कर दिया। ये बात तो दुरुस्त थी कि बहुत से लोग इकबाल को देखकर तरन्नम पर आमादा हो गए थे, मगर इसकी मकबूलियत की असल वजूह और थी जो इस वक्त के कलाम में मौजूद थी और बाद में ज़्यादा पुख्ता हो गए। ये जिक्र किया जा चुका है कि इकबाल बचपन ही से खुश आहंगे इन्हीं कुरान मजीद को खुश अलहानी से पढ़ने की आदत डाली गई थी, और इनकी ये आदत इस वक्त तक कायम रही जब तक इनकी आवाज़ जवाब न दे गई। बचपन में बाजार से जाकर मंजूम किस्से खरीद लाते और घर की औरतों को खुश अलहानी से पढ़कर सुनाते। ज़रा बड़े हुए तो रागों के अलाप सीख लिए। इस बात का तो वाकई कोई सबूत नहीं कि उन्होंने इल्म मौसीकी में दस्तरत हासिल करने के लिए किसी उस्ताद की तरफ रुजू किया, लेकिन इनकी आवाज़ बहर तौर अच्छी थी, कान मौसीकी से आशना थे और तबीयत शायराना थी, इसलिए किसी भी बहर के लिए मौजू ले का इंतखाब कर लेना इनके लिए मुश्किल ना था। बहरहाल इनमें अपने अशार तरन्नम से पढ़ कर सुनाने का ज़ौक लाहौर ही में पैदा हुआ। इसमें बेतकल्लुफ़ दोस्तों के इसरार का बड़ा हाथ था, जो ना सिर्फ अच्छे शेर की दाद दे सकने के अहल थे बल्कि मौसीकी की सही शनाख्त भी रखते थे और ऐसी महफिलों का अहतमाम भी करते थे। गलबन इसी ज़माने में इकबाल ने सितार खरीदी और सीखने के लिए बाकायदा सबक लिया। वो सितार बजाने की मशक किया करते थे और इन्हीं सितार नवाजी का शौक़ एक मुद्दत तक रहा। 1905 में यूरोप जाने से बेशतर वो ये सितार अपने किसी हिंदू दोस्त को दे गए, लेकिन मुज़्तराब को यादगार के तौर पर महफूज रख लिया। ये मुज़्तराब रकम ने इनके वफात के बाद दीगर इस्तेमाल की एशिया के साथ पड़ी हुई खुद देखी हैं, मगर बाद में ढूंढने से ना मिल सकी। गवर्नमेंट कॉलेज में जमाना तलब इल्मी के ज़माने में इकबाल का ये मामूल रहा कि गर्मी की छुट्टियां या दीगर तफ्तीलात सियालकोट में अपने वालदैन और अहल अयाल के साथ गुजारते थे, लेकिन इन अयाम में सियालकोट के किसी अदबी मजलस में इकबाल के शरीक होने या गज़ल पढ़ने का कोई सबूत नहीं मिलता। मुमकिन है कि इन दिनों सियालकोट में इनका बेशतर वक्त अपने ख़ानदान के अफराद के साथ गुजरता रहा हो, या चंद पुराने अहबाब की माइयत या सैयद मीर हसन की सोबत में। इकबाल की अब तक दरियाफ्त शुदा तस्वीर में जो तस्वीर सबसे पुरानी है वो 1899 में उतरवाई गई थी, जब इकबाल एमए के आखिरी साल में पढ़ते थे। इस तस्वीर में उन्होंने स्याह अचकन और सर पर रूमी टोपी पहन रखी है, घनी भूरी मूछे नीचे की तरफ तराशी हुई हैं और इन्होंने ऐनक लगा रखी है। इकबाल ने शायरी की इब्तदा एक रवायती गजल गो की हसीयत से की। 1893 से लेकर 1899 तक इनके तलब इल्मी के दौर की गजलों का जवाब जो अब तक दरियाफ्त हो सकी हैं, अगर बतौर मुतालिया किया जाए तो जाहिर होगा कि अगरचा वो दाग के रंग में गजल कहते थे, फिर भी हाल हाल ऐसे शेर कह जाते जिनमें इकबाल की झलकियां दिखाई देती थी। दाग दरअसल इश्क मिजाजी के शायर थे, मगर इकबाल ने सिर्फ मशक सखन की खातर मसनू आशकी की गजलें लिखी, जिन्हें इन्होंने बाद में खुद ही रद्द कर दिया। खलीफा अब्दुल हकीम तहरीर करते हैं, इस इब्तदाई जमाने की यादगार कुछ गजलें बांगे दरा में मौजूद हैं। इन गजलों से मालूम होता है कि जब जब दाग की जुबान की मशक कर रहे हैं, मौजू भी वही दाग वाले भी हैं, कहीं कहीं दाग के अंदाज के शेर निकाल लेते हैं, लेकिन इस दौरे मशक व तलकीद में भी इस इकबाल की झलकियाँ दिखाई देती हैं, जिसका आफ्ताब कमाल बहुत जल्द उफक से उभरने वाला था। इस दौर की शायरी को इकबाल की शायरी की सुबह काजब कहना चाहिए, जिसकी रोशनी तलुए आफ्ताब का पेशा पेश खैमा होती है। सफ़ा नंबर 173। इस दौर की दीगर खसूसियात में से एक यह है कि इकबाल की तवज्जो अपने गर्दोनवाह की तरफ मबजूल होने की बजाय ज़्यादातर अपनी ज़ात पर मरतकज थी। फ़लसफ़े के मताले में दिलचस्पी गो इनको गज़ल के रवायती मजामीन में बाद उकात हिकमत के मोती बखेरती देती रही, मगर इसने कुछ फिक्री उलझने भी पैदा कर दी थी। चुनचा इकबाल ने खुद 1910 में तहरीर किया, मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैंने हैगल, गोटे, मिर्ज़ा, गालब, अब्दुल कादर, बैदल और वर्ड्सवर्थ से बहुत कुछ इस्तफादा किया है। हैगल और गोटे ने एशिया की बातनी हकीकत तक पहुंचने में मेरी रहनुमाई की। बैदल और गालब ने मुझे ये सिखाया है कि मगरबी शायरी की इकतदार अपने अंदर समो लेने के बावजूद अपने जज्बा और इजहार में मशरकियत की रूह कैसे जिंदा रखूं। और वर्ड्स वर्थ ने जमाना तलब इलमी के ज़माने में मुझे दहरियत से बचा लिया। इस तहरीर से अजा है कि जमाना तलब इलमी ही में इकबाल के जहनी तजस्स ने इन्हीं तलाश हकीकत में सरगदा कर रखा था। ये एक खालसतन ज़ाती और बातनी नौयत की कशमकश थी, क्योंकि इस अहद के इकबाल किसी बात की सेहत व सदाकत को दूसरों की सनद के हवाले से तस्लीम करना पसंद ना करते थे। दहरियत की आर्जी कफ़ियत गलबन हैगल के मुतालिया से पैदा हुई। शेख अली हजवेरी ने कशफुल मजूब में दहरियत को हजाब से तबीर किया है। इनके नज़दीक ऐसे हजाब की दो किस्में हैं। पहली किस्म का हजाब वो है जो उठ नहीं सकता, गोया ऐसे शख्स के कलब पर मोहर लग जाती है। यही वो मुस्तकिल दहरियत है जो जामद और किसी कहना मर्ज की तरह ला हासिल है। दूसरी किस्म हजाब हक है। ये ऐसी दहरियत है जिसका आगाज तो तशकीक से होता है लेकिन अंजाम ईमान पर। ऐसे शख्स का बातनी वजूद अरफान हक और इम्तियाज़ व खैर व शर के लिए पहम मुतहरक और कोशाह रहता है। ये दहरियत किसी भी मुतजस्सस जहन के सफर इरतका में एक आर्जी मर रहा है। सवाल पैदा होता है कि जब इकबाल की तलीम व तरबियत इब्तदा ही से रवायती इस्लामी नंज पर हुई थी तो वर्ड वर्थ ने इन्हें क्यों इस तरह मुतासर किया। इकबाल का ज़ौक़े तजस्स इस अमर का शाहिद है कि वह खुद अपनी रवायत की तंग और मदूद फिजा से बेजार थे। यूरोपी फलसफा के मुतालिया ने इन्हें इस जहनी खलफिशार से दोचार किया जिसमें 18वीं और 19वीं सदी का यूरोपी फलसफा मुबतला था। इसलिए अगर इनके मुतजस्सस ज़ेन और शायराना कलब ने वर्ड्स वर्थ के मुताले से अकलियत के खोखलेपन का एक काबिले फहम जवाब पा लिया तो कोई तहज्जुब की बात ना थी, बल्कि ये तो इनकी सलामती अकल की दलील थी कि वो अपने अहद के मादा प्रस्ताना नज़रियात से असल कबूल करने के बावजूद इनसे गुमराह ना हुए। फलसफा व तसव्वुफ़ का हर तालिबे इल्म जानता है कि वर्ड्स वर्थ के ख्याल इबन अरबी की वजूदी तलीमात से कितनी मुशाबत रखते हैं। इससे बासानी ये नतीजा अखज किया जाता है कि जहनी अरतका के इस मरहले में इकबाल को तसव्वुर वहदतुल वजूद ही ने आलम तशकीक से निकाला। इस मुख्तसर दौर की शायरी में इकबाल के इरतकाए फन की रफ्तार बहुत तेज थी। बाद गजलों ने फन की पुख्तगी के साथ फिक्र की गहराई नुमाया है। गजलों में गो इश्क मजाजी की अमेजश है लेकिन मजामीन में हर कदम पर मतसूफाना या हकीमाना शायरी रवायती गजल को पीछे धकेल रही है। अंदाजे बयान में अनोखापन बढ़ रहा है। वजूदी फलसफे के जेर असर बाद अशार तसूफ के रवायती नजरिया फना की तर्जमानी करते नजर आते हैं। गोया इकबाल के नज़दीक नफस की इनफरादियत एक फरेब है जो नमूदे हक के बाद खुद मिट जाता है और फिर वही अजली हकीकत खुदा बाकी रह जाता है। इसी अहद में इकबाल ने वजूदी फलसफा की रोशनी में अपने सियासी तसवरात की बुनियाद रखी और बाद में वतनी कौमियत की हमायत में नज़में तहरीर की। सफ़ा नंबर 175। जमाना तलब इलमी ही के ज़माना में इकबाल ने नए अंदाज की शायरी की इब्तदा की और रवायती गज़ल कहना छोड़कर नज़म की तरफ मुतवज्जा हुए। ये इन पर फिक्री अफकार के असर का नतीजा था। जदीद तमदन ने जो अंग्रेज़ों के साथ बरसगीर में आया था और उर्दू अदब में नई इकदार को फ़रोग दिया। अलीगढ़ तहरीक के दौरान ही कम अज़ कम मजामीन के इंतखाब में मगरबी अंदाज की नई शायरी वजूद में आना शुरू हो गई थी। हाली शिबली और आज़ाद गो अंग्रेज़ी दान ना थे फिर भी उर्दू शायरी के रवायती अंदाज को खैर बात कहकर जदीद असरात कबूल कर चुके थे। इकबाल की तालब इलमी के दौर में गवर्नमेंट कॉलेज में भी जदीद असरात काम कर रहे थे। इनके सामने उर्दू और फारसी के अलावा अंग्रेज़ी शायरी के बेहतरीन नमूने मौजूद थे। उर्दू और फारसी में वतन और कौम की मोहब्बत की शायरी मफकूद थी मगर ये जज्बात अंग्रेज़ी शायरी में मौजूद थे। पास मगरबी असरात ने इब्तदा ही से इकबाल की शायरी का रुख बदल गया। इन्होंने चंद अंग्रेज़ी नज़मों का आज़ाद उर्दू तर्जमा भी किया और इनकी बाद नज़में गो तर्जमा तो ना थीं रबता अफकार और असलूब बयान के अतबार से मगर भी थीं। हाली ने जदीद असरात के तहत कौमी या मिली शायरी की दाग बेल भी डाली थी मगर मुसलमानों की हयात मिली में वो दौर ही ऐसा था कि कौमी शायरी ज़्यादातर कौम का मातम थी। सो इकबाल ने भी जब अपने हबाब के कहने पर सुनने पर मिली शायरी की तरफ रुजू किया तो इब्तदा मातम से की। बहरहाल तालिबे इल्मी के ज़माने में اقبال کی بعض غزلیں چند رسالوں مثلاً زبان دہلوی، شور محشر وغیرہ میں شائع ہوئیں، اور ان کی شہرت ان لوگوں تک محدود تھی جو مشاعروں میں شریک ہوتے تھے۔